हेलो जी, मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ एंड दिस इज घर का रेडियो। सबसे पहले व्हाट इज घर का रेडियो? घर का रेडियो मेरी जस्टिन जोसेफ की एक पॉडकास्ट का एक पॉडकास्ट मेरी मलयाली अभी आ रही है बाहर। घर का रेडियो जस्टिन जोसेफ का एक पॉडकास्ट है और इस पॉडकास्ट में मैं बातें करता हूँ, बकैती करता हूँ, बट मोर इम्पॉर्टेंटली मैं किस्से सुनाता हूँ, कहानियाँ नहीं सुनाता। कहानियों में और किस्सों में जो मैं यहाँ डिफरेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ बैठ के मैं 16 ताबीज़, एक हुकुम्बा दो, शुभ रात्रि जैसी कहानी नहीं सुना रहा हूँ। यहाँ मैं बकैती पेल रहा हूँ, प्रैक्टिकली बैठ के मैं बातें कर रहा हूँ। देखो, ये शो बनाने के पीछे जो सबसे बेसिक सा मोटिवेशन था वो ये था कि सिंस माय चाइल्डहुड, जब पहली बार स्पेशली पहली बार हमारे घर में वो आई थिंक 8th-9th स्टैंडर्ड में कार आई थी, तो उस कार में ना एक ऑडियो सिस्टम था। तो जब हम लोग कहीं जाते थे और वहाँ से हम जब वापस आते थे तो कोई आरजे वहाँ माइक के एक एंड में बैठा होता था एंड दे यूज़ टू टॉक। एंड यार, मुझे आरजेज इतना फैसिनेट करते थे। मुझे आरजे बनने का कोई शौक नहीं था। क्यों? आवाज़, मतलब मेरी आवाज़ कोई वैसी आवाज़ नहीं है यार। आरजेस की आवाज़ सुनी क्या होती है, मतलब ओए वैसी हस्की, मतलब लगता है ये रुकना नहीं चाहिए, ये आदमी बोलते रहना चाहिए। तो मुझे पता था मेरी आवाज़ वैसी नहीं है एंड आई रियलिटी पता होनी चाहिए अपने को। तो मैंने कभी ऐसा कोई ख्वाब नहीं देखा टू बिकम एन आरजे, लेकिन थोड़ा सा दिल था कि कभी ऐसे माइक के सामने बैठूं और करूं। तो 2020-ish के आसपास जब मैंने स्टोरी टेलिंग को स्टार्ट किया तो मुझे काइंड ऑफ पॉडकास्ट जैसे कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला, जहां पे यू कैन जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ अ माइक एंड टॉक योर हार्ट आउट, और कोई सुने ना सुने ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने बोल दिया एंड यू हैव लाइक सेंट इट टू द यूनिवर्स, तो कोई सुन ले अच्छा लगेगा, कोई नहीं भी सुने कोई दिक्कत नहीं। तो हमने 2020 में घर का रेडियो स्टार्ट किया और मैंने इतने ज़्यादा कच्चे तरीके से इसकी शुरुआत करी है। लाइक इफ यू लिसन टू दोज एपिसोड एंड यू वुड लिसन टू दिस, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ चेंजेस। द बिगेस्ट चेंजेस सेगमेंट्स, तब हम लोग सीधा एक ठुक पे कुछ ना कुछ बोलते जाते थे। द पॉइंट इज, घर का रेडियो इज माई कम्फर्ट बबल टाइप का। यहाँ मुझे व्यूज़ की कोई चिंता नहीं है, यहाँ मुझे पैसे कमाने का कोई वो नहीं है। आपको घर के रेडियो में एड्स भी नहीं मिलेंगे क्योंकि मुझे लगता नहीं है यहाँ पे कोई एड्स आएंगे। तो द पॉइंट इज़, ये मेरा एरिया है। और जब मैंने इसे सुनाना शुरू किया था तो काइंड ऑफ ना एक बहुत छोटी सी कम्युनिटी थी, बहुत छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं, अराउंड 50-100 फिर 200-300 के आसपास एक छोटी सी कम्युनिटी बनी जो घर का रेडियो सुनते थे। मेजॉरिटी लोग मेरी कहानियाँ सुनने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैं बातें करने लगा कुछ लोग थे जो बोले आप बोलो यार अच्छा लगता है। तो जब उन्होंने बोला बोलो अच्छा लगता है, तो फिर मैं थोड़ा सा और ऐसे करने लगा। धीरे धीरे घर का रेडियो स्टार्टेड टू इवॉल्व एंड दिस इज, आई डोंट नो वेदर शुड आई से इट एज सेकेंड सीजन, दिस इज अ फ्रेश न्यू सीजन एंड दिस इज नॉट एपिसोड नंबर 1, दिस इज एपिसोड नंबर 0। 0 इसलिए बिकॉज घर के रेडियो के जनरली एपिसोड जो होंगे ना वो सारे अपबीट ऐसे 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 कुछ हो रहा है अमेजिंग। ये एपिसोड थोड़ा सा पर्सनल है। ये एपिसोड काइंड ऑफ एक ऐसा एपिसोड है जहां पे आई वॉन्ट टू से सम थिंग्स, आई वॉन्ट टू टेल अ फ्यू किस्से, कुछ ऐसे किस्से जो मेरे लिए भली पर्सनल हैं लेकिन हैं कुछ। तो यहां पे कुछ ऐसे मोमेंट्स भी हैं और कुछ ऐसे मोमेंट्स भी हैं, सबका कॉम्बिनेशन है। और मैंने इसे एपिसोड नंबर 0 इसलिए रखा क्योंकि यही है घर का रेडियो, एक लड़का अपने घर पे बैठ के माइक के सामने कुछ किस्से सुना रहा है, कभी अपने सपने सुना देता है, कभी खाने के बारे में बात करता है तो कभी किसी गाने के बारे में बात करता है, लेकिन ये उसका एक कम्फर्ट स्पेस है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हेलो जी, मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ एंड you are listening to the episode number 0 of our series Ghar Ka Radio. मैं happy हो गया जी। मुझे 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 बहुत अच्छा लग रहा है. इट्स टाइम टू बिगिन. मतलब ओह माय गॉड, वो बोल के मुझे ना एकदम से एक थ्रो बैक मिला. जो इसके पहले कुछ 15 एपिसोड्स हमने पहले सीजन में बनाए हैं, बाय द वे. हाँ, तो मेरे लिए इट्स अ ह्यूज मेमोरी फॉर मी. अब मैं एक चीज़ करने वाला हूँ जिसपे, उसे करने से पहले ये वीडियो जो है, वीडियो क्यों है, देखो बाबू ऐसा है, मैं जब घर के रेडियो को हमने शुरू भी किया था ना, तब मैंने किसी एपिसोड में कहा था कि एक दिन आएगा जब हम ना वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे. क्योंकि इसके पहले ना मैं, हमारे बगल में जो अलमारी रखी है, मैं अलमारी खोल के उसके अंदर मुंह दे के रिकॉर्ड करता था. बिकॉज यू नो, मेरे पास माइक और ये सब नहीं था ना, तो अकूस्टिक्स बहुत अच्छे होते हैं एक अलमारी के अंदर. तो तब क्या होता था, बहुत गर्मी होती थी, तो मैं जनरली ऐसे उतार उतार के एकदम अपने अदरक जैसे शरीर को लेके खड़ा होता. तो ऑब्वियसली तब वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते थे. तब भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूँ, कि तब अगर मुझे आप देख लेते तो आपको थेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती थी. बट द पॉइंट इज, मैंने तब कुछ चीज़ें कही थी. एक था कि हम लोग किसी दिन वीडियो पे आएंगे जहाँ एक माइक रखा होगा, पॉडकास्टी सा, और कमरा होगा, लाइट होगा. तो वो सब तो हो गया, लेकिन एक चीज़ और बची है. मैंने कहा था कि ऐसे असिस्टेंट असिस्टेंट होगी, ऐसे जूस वूस लेके आएगी. तो मैं सोच रहा हूँ एक आध दिन ना जोसलिन को मैं बोल दूंगा लीक करने के लिए. मतलब तो कहते हैं मेरी वो विश भी पूरी हो जानी है. बट द पॉइंट इज, वीडियो हमने अभी इसलिए रखा है, एक तो कि खाब था, दूसरा ये कई बार ऐसा होता है कि पॉडकास्ट देखते समय लोगों का दिल करता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे होस्ट का रिएक्शन कैसा था. मेरा दिल करता है, ठीक है, मैं कुछ पॉडकास्ट को जो सुनता हूँ, मेरे को तो बड़ा मन करता है. और अगर वहाँ पे वीडियो नहीं हो, तो इसलिए मैंने वीडियो बना के रखा है कि अगर ऐसा कोई दिल करे तो यहाँ सुन लेना, नहीं तो ट्रस्ट मी, ये एक पॉडकास्ट है, इसे ऑडियो प्लेटफॉर्म पे ही सुनना. इसे स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, हम हर जगह अपलोड कर देंगे. ठीक है जी, ऑल गुड. तो आज की तारीख क्या है वैसे, बाय द वे 16th of September. ओहो हो, ये मंथ बहुत सॉलिड हिट कर रहा है मुझे कसम से. क्यों हिट कर रहा है ये पता चलेगा, बट द पॉइंट इज, लेट्स बिगिन विद इट. एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार. दो चीज़ें मैं पहली क्लियर कर देना चाहता हूँ. पहला तो ये कि ये एपिसोड जो होगा ये लंबा हो सकता है, और जनरली घर के रेडियो के एपिसोड्स लंबे होते हैं क्योंकि मैं बकैतियाँ पेल रहा हूँ ना बैठ के. दूसरी चीज़, मैं अभी ये हेडफोन पहनने वाला हूँ. मैं हूल बनने के लिए हेडफोन नहीं पहन रहा हूँ, ठीक है, मज़े मत लेने आना DMs में. ये हेडफोन क्यों पहन रहा हूँ मैं, उसका रीज़न बता देता हूँ. जब ये आप हेडफोन पहनते हो तो ये माइक में जो मेरी ऑडियो जा रही है ना, ये मुझे लाइव सुनाई देती है. अब क्या है, जब हम कहानियाँ सुनाते हैं तो वहाँ पे 1.5 मिनट का, 2 मिनट का कहानी और किस्सा होता है, तो उसमें क्या होता है ना, सुनाने के बाद वापस से अपन रीएडजस्ट करते हैं खुद को माइक के सामने, कैमरा के सामने, और अपन दोबारा से अगला एपिसोड सुनाना शुरू करते हैं. यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ लंबे हैं, मतलब 15-20 मिनट तक मैं बकायती पेले जा रहा हूँ. अब अगर गलती से ऑडियो गलती से डिस्कनेक्ट हो गया किसी वजह से, या फिर मैं, अरे लेकिन आप लोग बिलीव नहीं करो, और मैं ऐसे करते करते मैं माइक से दूर चला गया, तो ऐसे में काइंड ऑफ वो ऑडियो मुझे रियलाइज़ करवाता है. दूसरी चीज़, मैं माइक के अगर यहाँ बैठूंगा तो फोकस यहाँ पे होता है, तो कैमरा का फोकस सही रहेगा. मैं ऐसे चल जाऊँगा तो फोकस वहाँ पीछे कहीं जाएगा, ठीक है. मैं कूल नहीं बन रहा हूँ, ये एक अच्छी बात होती है. मैं दिखने में बंदर लग सकता हूँ, बट द पॉइंट इज कि दिस इज वेरी, और होना भी चाहिए ना यार, आरजेस को देखा नहीं है कैसे बैठ रहे. मुझे शर्म आ रही है, मैंने अपनी शक्ल व कैमरा में. बट कूल बनने के लिए नहीं, ये जरूरत है तो इसलिए हम कर रहे हैं. नाउ लेट्स बिगिन विथ हर टुडेज एपिसोड. तो सबसे पहले आज के हमारे जो एपिसोड है, इसका नाम जो है, पहली बार हो रहा है बाय द वे ऐसा कि एपिसोड रिलीज, मतलब पूरी तरह रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग नाम देते थे, लेकिन इस बार नाम पहले से ही है, बिकॉज मुझे पता है मुझे कि किधर किधर बोलना है. तो नाम ऑफ द एपिसोड इज रिपल, पेटेंट और इश्किया. ये नाम क्यों है, ये काइंड ऑफ आपको इस एपिसोड में समझ में आ जाएगा. सो प्लीज़ अपना कोई प्रोजेक्ट करना, कोई काम कर लेना, किचन में खाना बना लेना, कमरे में खाना बना लेना, कुछ करते रहना और इस पॉडकास्ट को सुनना. पॉडकास्ट ऐसे बैठ के सुनने के लिए नहीं होता, इस कुछ करते करते कुछ हल्की डोरी पे चलते रहना चाहिए, ठीक है. हाँ जी, तो इससे पहले कि मैं सब कुछ शुरू करूँ, ये शुरू करने से पहले का एक कॉन्टेक्स्ट समझ लेना. कॉन्टेक्स्ट शुरू होता है सितंबर 2022 से, एक्चुअली में अक्टूबर से अभी के लिए ले लो, सितंबर में अपन बाद में आएंगे. अक्टूबर में मैं अपने काम में चूंकि मैंने माइक खरीद लिया था, मैंने एसी खरीद लिया था, 7 महीने से मैं स्टोरी टेलिंग नहीं कर रहा था, तो आई केम बैक, आई स्टार्टेड विद द स्टोरी टेलिंग, आई वॉज डूइंग प्रिटी डिसेंट. नवंबर में आई डिसाइडेड कि मुझे एक चैलेंज लेना चाहिए, द इनफेमस चैलेंज ऑफ 270 डेज, जो 270 दिनों में हमें 25K करने थे, बट आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि 25-27 दिन के अंदर वी क्रॉस्ड मतलब 1 लाख. बढ़िया बढ़िया चल रहा था, एवरीथिंग वॉज गुड, ऑल गुड ऑल गुड. डिसम्बर का टाइम आया, पीपल स्टार्टेड मैसेजिंग मी एंड वो बहुत ऑसम ऑसम सा माहौल सा बनने लगा, एवरीथिंग वॉज गोइंग गुडी गुडी. टेडेक्स से इन्विटेशन आया, जनवरी 21 तारीख को मैं टेडेक्स पे गया परफॉर्म किया, फेब 12 तारीख को मैंने अपने शहर में मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन नॉट जस्ट भोपाल बट इवन ऑन द नेशनल स्केल, मैंने वहाँ जाके परफॉर्म किया. जिंदगी में पहली बार अपने पापा के सामने किसी ने मुझसे सेल्फी मांग रहे हैं, कोई ऑटोग्राफ ले रहा है, पापा वहाँ कोने में खड़े हैं, मोमेंट्स बन रहे हैं, मोमेंट्स बन रहे हैं. एंड मिड फेब काइंड ऑफ रीच होता है, मिड फेब में मैं इंडिया टूर की काफी हद तक प्लानिंग करके बैठा हूं, पैसे इन्वेस्ट हो चुके हैं और पता नहीं क्यों मेरे को एक प्रॉब्लम शुरू होती है, प्रॉब्लम आगे जाती है और मुझे मेरे एक दोस्त के कारण, ही इज अ डॉक्टर, मैंने उसको अपने कुछ सिम्टम्स बताए तो ही काइंड ऑफ डायग्नोस्ड कि ब्रो ये पाइल्स है, तो क्या करना क्या होता है इसमें, भाई डॉक्टर को दिखा, ठीक है डॉक्टर के पास अपन गए, सो ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग, डॉक्टर को जाके दिखाया. अप्रैल में मैंने एक वीडियो बना के लोगों के बीच में बता भी दिया क्योंकि मुझे अपेरेंटली पता चला कि पाइल्स को लेके काफ़ी शर्म भरा माहौल है हिंदुस्तान में, जबकि हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन इस बीमारी के लिए प्रोन है और प्रेग्नेंट वुमेन में अराउंड 60-70% वुमेन जो होती हैं वो ऑलरेडी जाती हैं बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव प्रेशर दे हैव. तो मैंने कहा यार इस पे तो बनानी है, और मेरे पापा ने बड़ी कंफर्टेबली इस बारे में बात करी थी, तो मैंने कहा यार फिर तो इस बारे में बात होनी चाहिए. एनी हाउ ये सब चल रहा है. अब हुआ ये कि जब ये पाइल्स का इशू मेरे को शुरू हुआ तो मेरी जिंदगी में ना दो चीज़ें हुई, एक तो जो मैंने लाइव टूर का सोचा था वो तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि एक साल तक तो बेटा गलती से भी स्टेज शोज और कहीं ट्रैवल करने जा रही हो ये सब तो सोचना भी मत, एक महीने की कमिटमेंट्स मत लेना क्योंकि तुम्हें एक हफ्ते का पता नहीं रहेगा, ठीक है. दूसरी तरफ जो प्रॉब्लम हुई वो ये थी कि हाउ डू आई पुट इट, एक आर्टिस्ट को जब ब्रेक मिलता है ना, मैं 3 साल से मेहनत कर रहा था यार, मैं 2020 से मेहनत कर रहा हूँ, सिंस मे ऑफ 2020, मेरे को 2022 के नवंबर में वो ब्रेक मिला था, नियर टू 3 साल कंप्लीट होने वाले थे. एक आर्टिस्ट को जब ब्रेक मिलता है ना तो वो फाड़ देता है यार एकदम, मतलब वो ना वो कहानियाँ और मतलब वो अपने कंटेंट को डालता है. अब मेरा कंटेंट क्या ना ऐसा भी नहीं है कि मैं 15 सेकंड का 20 सेकंड का कंटेंट बना रहा हूँ, लंबे होते हैं, टिकटॉक्स टाइप के कंटेंट नहीं है ना, तो टाइम भी लग रहा है, लेकिन जहाँ पे अपने ब्रेक को यूटिलाइज करना चाहिए, मैं ऑन द मूव बिस्तर पे पड़ा हुआ, गिल्ट डेवलप होने लगा. गिल्ट डेवलप होने लगा तो मैं एक ऐसे सर्कल में जाने लगा जहाँ पे मुझे नहीं पता था कि मुझे वापस दोबारा से कभी जाना पड़ेगा. 2020 में कुछ ऐसा फेस किया था मैंने, बट एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ हुई वो ये थी, कमरे के अंदर खुद को बंद 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 रखने के कारण मैं काफ़ी हद तक कई चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव सा होने लग गया. मुझे एक चीज़ और इफ़ेक्ट कर रही थी पर मैं उसे इग्नोर कर रहा था, मैं उसको देख भी नहीं रहा था, वो आएगी बाद में कहानी में, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज मुझे कुछ समझ नहीं आया. और फिर हमारी जो गाड़ी है वो पहुंचती है फर्स्ट ऑफ मे. एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा दिन है क्योंकि मैं अपने इस कमरे के अंदर जो अपने आप को लूज़र टाइप की एक इमेज बना, तो यार तुम समझ रहे हो ना, मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ पर मैं सैड हूँ यार, मैं कहानियाँ नहीं सुना रहा, लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं अरे यार तू कहानी क्यों ना, वो भी यार नेगेटिव मैसेजेस भी आ रहे हैं, वो भी इफेक्ट कर रहा है, और मेरे लिए तो पहली बार है ना यार, मैं तो 1500 वाला आर्टिस्ट हूँ, मैं कहाँ इतने मैसेजेस के उसको रिप्लाई करने के उसमें हूँ, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड होने लगा. एंड देन फर्स्ट ऑफ मे करीबन दोपहर का वक्त हो चुका था, शाम होनी वाली थी, मम्मी और जोस्लिन ये दोनों जो हैं ये नानी के घर गए हुए हैं. क्यों गए हुए हैं? बिकॉज मई फर्स्ट हमारे घर में काफ़ी ऐतिहासिक दिन है क्योंकि मई फर्स्ट को मेरी नानी का बर्थडे है. रुको, मेरी नानी की बेटी यानी मेरी मौसी का बर्थडे है, रुको, मेरी मौसी की बेटी यानी मेरी कजिन का बर्थडे। दिस डे इज द डे ऑन माई मम्मी के साइड ऑफ माई खानदान। और मैं ये सोचता हूँ कभी कभी कि जोसीना पे कितना प्रेशर होगा, मेरी कजिन पे कितना प्रेशर होगा। लाइक वी आर ऑल लाइक ड्यूड प्लैनेट, लाइक जो भी है मई फर्स्ट को बार, ऐसा नहीं यार, रिकॉर्ड कैसे तोड़ सकते हो यार आप, आई मीन लाइक कम ऑन यार। एनी हाउ, सो मम्मी जो है नानी के घर गई हुई हैं, और मेरी नानी जो है वो कुलार में रहती हैं, भोपाल में कुलार करके एक एरिया है। मैं घर पे बैठा हूँ और मुझे ना खांसी आ रही है, एक मिनट रुकना, सॉरी। द थिंग इज कि मेरा जो दिमाग है, ठीक है, इसमें एक बड़ी अजीब सी खुरापाती मचती है कि जस्टिन, और इससे पहले कि मैं बताऊं खुरापाती क्या थी, मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं ना अपने स्कूल के दिनों से, मुझे एक चीज़ में बड़ा मज़ा आता है, खेलना कूदना अपनी जगह रहता है, लेकिन हम लोग जब शाम को फुटबॉल खेलते थे तो उसके बाद ना मैं और मेरे कुछ दोस्त थे, मैं, ईशान भैया, क्षितिज, अभिषेक, हम लोग ना चलना शुरू कर देते थे, कहाँ चल रहे हैं खुदा जाने कहाँ चल रहे हैं। अच्छा, अभिषेक और क्षितिज तो फिर भी बहुत लिमिटेड हमारे साथ चले, मैं और ईशान भैया हम लोग चले हैं भाई साहब, हम कहाँ चले हमें खुद को नहीं पता, मतलब कई बार ऐसे निकल जाते थे बस, मतलब कॉलोनी से राइट लेके निकल गए, कॉलोनी से लेफ्ट लेके निकल गए, कहीं अंदर की मतलब कौन सी गलियों में निकल गए, चलने में बहुत मज़ा आता था। और अपने स्कूल के दिनों में मैं बहुत चला हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आया। तब मैं 64 किलो का था, 64। आज मैं, और उस टाइम की जब मैं बात करूँ, आज तो मैं नहीं कह सकता, आज मैं अंडर 100 किलोज हूँ, थैंक यू बार कम कर मोटे। द पॉइंट इज, उस टाइम पे मैं 100 के ऊपर था, आई थिंक 103, 104 और समथिंग। एंड मेरा हमेशा से ना एक बहुत अजीब सा फैसिनेशन रहा है कि मैं अपने घर से कुलार तक चल के जा सकता हूँ, क्योंकि हमारे सभी रिश्तेदारों में कुलार इज़ द फार्देस्ट हमारे घर से। हम भोपाल के एक कोने में रहते थे, भोपाल बहुत डेवलप हो चुका है, अब हम लोग एक कोना नहीं कह सकते खुद को, क्योंकि हमारे इस साइड भी 10-15 किलोमीटर तक बहुत डेवलपमेंट हो चुकी है, एयरपोर्ट रोड में डेवलपमेंट हो रही है यार, मतलब खैर भोपालियों के लिए वो नॉस्टैल्जिया है, बाकी लोग सोच रहे होंगे कहानी पे आओ। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक 100 किलो का लड़का सोचता है कितना फनी होगा ना अगर मैं चल के अपने घर से कोलार तक चले जाऊं। तो फिर मैंने खाना खा लिया और मैंने सोचा फनी अपनी जगह पर रहने देते हैं, चलेंगे बाद में कभी। देखो यार, ये चलने के पीछे का कॉन्सेप्ट समझना, व्लॉग बनाओ GT8 का आइडिया जो है दिमाग में आ चुका है, व्लॉग बनाओ GT8 मेरी व्लॉग सीरीज है, तो मैंने सोचा कि यार कितना मज़ा आएगा टू हैव एन एपिसोड जिसके अंदर मैं कुछ इतना इंटरेस्ट, मतलब मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है ये, एक हमेशा से टू डू लिस्ट वाला आइटम है, तो यू नो एक अच्छा व्लॉग बन सकता है, अच्छा बन सकता है। पर फिर मैंने खाना खा लिया, तो खाना खाने के बाद तो अब टाइम हो चला है कुछ 5-6, और फिर से दिमाग में ऐसे थोड़ी शरारत हुई कि व्हाट इफ अब उस दिन मैं चल के कुलार गया या नहीं गया। एंड ट्रस्ट मी, जो आप सोच रहे हो एंडिंग, ये एंडिंग वैसी नहीं है, कुछ है कुछ इसमें, ये आपको व्लॉग बनाओ GT8 के एपिसोड नंबर 0 में मिलेगा, वो भी एपिसोड नंबर 0, और उसके पीछे का आइडिया जोसलिन का था, क्योंकि व्लॉग बनाओ GT8 का पहला एपिसोड वाज सपोज टू बी जो मेरा पहला इंटरव्यू था एट रेड FM। सो जोसलिन ने कहा कि भैया सिंस वी आर स्टार्टिंग वाई नॉट स्टार्ट विद 0, और मेरा पता नहीं क्यों मन ये कह रहा था कि मैं प्रोग्रामर हूँ ना, मतलब मैं अपनी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो प्रोग्रामर्स कभी भी 1 से स्टार्ट नहीं करते काउंटिंग, फ्रॉम 0। सो लाइक दिस एपिसोड दैट इज गोइंग टू बी 0, और उस एपिसोड में वो पूरा का पूरा दिन का वर्ड है, एंड जो होगा उस एपिसोड में देख लेना। मई फर्स्ट को जो भी हुआ या जो नहीं हुआ, मेरे अंदर कुछ ट्रिगर सा हुआ, शायद एक लड़का जो इतने दिनों से खुद को काइंड ऑफ कुछ नहीं कर रहा वाले एटीट्यूड में बैठा हुआ है, उस लड़के को एक अचीवमेंट सी मिली। यू नो एक होता है ना कि टटरडा, ओ वी डिड समथिंग नाइस, कुछ तो किया, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ पिछले 2-3 महीने, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने बिस्तर में लेटा हूँ और मैं खुद के लिए गिल्ट महसूस कर रहा हूँ, मैं मैसेजेस से गिल्ट महसूस कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ अरे यार मैं, पर मैंने कुछ किया, या शायद मैंने उस दिन वो चीज़ नहीं करी, क्या पता, वीडियो में पता चलेगा. द पॉइंट इज मेरा एटीट्यूड काइंड ऑफ स्टार्टेड टू चेंज. एक रिपल शुरू हुआ. रिपल, देखा कितनी आसानी से मैंने रिपल बोल दिया. इसके पहले मैंने एक वीडियो बना के रखा है, रिपल रिपल, पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूं मैं, खुदा जाने. रिपल कितनी आसानी. इसमें पानी है, चाय चाय वाय कुछ नहीं है, चाय ठंडी हो जाती है, लंबा पॉडकास्ट रहता है ना. ऑल्सो मैंने बनाया नहीं, बस ऑनेस्टली बात वही है, मैं पी लूँगा कोई चाय बना के देगा तो, कोई बना दो ना प्लीज़. या पीछे वो किस्सा मैं बाद में सुनाऊंगा. द पॉइंट इज तो यार मैं ऐसे ना बीच में थोड़ा डाइवर्ट हो जाता हूँ, समझ नहीं, घर का रेडियो है ना तो इससे थोड़ा चिल सीन अपना. मेरा एटीट्यूड धीरे धीरे चेंज होने लगा. एक रिपल सा इफेक्ट जनरेट हुआ. मई 14 या 15 तारीख को, मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रही, बट मैंने जोसलिन को अपने कमरे में बुलाया. क्यों बुलाया? क्योंकि मैं इसके पहले जो 3 से 4 बार नहीं, इनफैक्ट शायद 9-10 बार कर चुका था, मैं जोसलिन से कहता था, जोसलिन तू आज फ्री है क्या, आज तेरा कॉलेज तो नहीं है? नहीं नहीं भैया क्या हो गया, कुछ काम, एडिटिंग का काम था क्या? हाँ एडिटिंग करते हैं अपन करके. और फिर शाम का वक्त होता, जोसलिन आके मुझसे पूछती, भैया वो एडिटिंग, अरे यार वो एक्चुअली में कहना है क्लाइंट का काम आ गया, अरे यार वो एक्चुअली में कहना कि मैंने रिकॉर्डिंग की कोशिश करी ऐसा हो गया, अरे यार एक्चुअली 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 एक्चुअली. उस दिन मैं एक बहाना मारने वाला था, बस फ़र्क ये था कि मैं शायद पहली बार एक ऐसा बहाना मारने वाला था जिसमें मेरा ईगो हर्ट हुआ. अभी तक कभी भी मेरा स्टोरी टेलर ईगो हर्ट नहीं हुआ, स्टोरी टेलर सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट नहीं हुई थी, लेकिन आज हर्ट हुई. क्योंकि मैं बोलने वाला था कि मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठा, मैंने रिकॉर्डिंग करी भी लेकिन यार अच्छी नहीं आई, और मैं ये बोलने वाला था जोसलिन को, इसलिए यार मैं ना दोबारा से रिकॉर्डिंग करता हूँ और अपन कल देखते हैं. आज तक 2020 से लेकर आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि मैं एक रिकॉर्डिंग सेशन पे बैठा हूँ. मैं ये नहीं कह रहा मैं एक टेक में देता हूँ, नहीं यार ऑब्वियसली रीटेक्स लगते हैं, कई बार कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन जब बैठे हैं तो रिकॉर्डिंग करके उठे हैं. कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी, नहीं यार खुद का दिल तो भा लेते हैं एक टेक में. उस दिन नहीं हो पाया यार मुझसे, मुझे ऐसा लगा कि यार जस्टिन तू इतना गिर गया है दैट तू अपनी स्टोरी टेलर की सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बेचने के लिए रेडी है, तू इतना प्रोक्रेस्टिनेशन में गिर चुका है. एंड वन मोर थिंग, लेकिन अभी भी उस चीज को हम इग्नोर कर रहे हैं, पता चलेगा. जोसलिन को मैंने कमरे में बुलाया और मैंने उसे बड़ी ईमानदारी के साथ कहा कि सुन ना यार, वो मैं तेरे से हमेशा कहता था ना कि वो मुझे वो मतलब ये खो नहीं पाया या फिर ये क्लाइंट का काम है, यार वो ना झूठ था सब जो मैंने बोला ना. एक कन्फेशन जब आपके दिल से निकलता है ना, एक इट्स वो जो कहते हैं ना, इट्स अ वेट ऑफ योर शोल्डर्स, आई थिंक इट वॉज अ वेट ऑफ माई चेस्ट ड्यूड. लाइक मैंने जैसे उसे बोला और फिर मैं रुका ही नहीं, मैं तो उसको सिर्फ इतना बोला निकला कि मैं ना प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ एंड आई टेल यू मोर अबाउट, पर मैं उस दिन रुका ही नहीं, मैंने जोसलिन के सामने बोलना शुरू किया. मैं जोसलिन के सामने ऐसे बहुत कुछ बोल देता हूँ, बहन है साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रही है तो सुन, बट मोर इम्पॉर्टेंटली क्या है ना, मेरी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ऐसे क्लोज वाले टाइप दोस्त नहीं है, है कुछ मेरे अपने पर्सनल रीजंस लेकिन नहीं है. तो कभी कभी होता है ना जब थोड़ा सा ऐसे पारा ऊपर हो जाता है तो अपने दोस्तों के सामने निकाल देना चाहिए, लेकिन ये वो वाला पीरियड है ना जब मैं किसी से बात नहीं कर रहा, जब मैं कमरे के अंदर खुद को बंद करके बैठा हूँ, मैं दोस्तों से भी बात नहीं कर रहा था, दोस्तों के मैसेजेस आते थे मैं रीड नहीं करता था, मिलने के लिए बोलते थे मैं रीड नहीं करता था, पैसे भी नहीं थे ना जेब में, तो अभी भी कुछ खास नहीं है, बट द पॉइंट इज लूज़र टाइप का फील होता था कि मैं उनसे मिलूंगा तो मुझे पता है वो हमेशा ऐसे देखते थे, यार जस्टिन 1.5 लाख फॉलोवर्स, यार क्या कर रहा है तू, गायब कहाँ हो गया, और तेरी तबीयत ठीक है क्या? तबीयत तो ठीक है, थोड़ी दुरुस्त हो चुकी है तब तक, लेकिन चिड़िया की आवाज़ आई क्या? अच्छा चिड़िया की क्यूट आवाज़ थी. द पॉइंट इज मैंने जोसलिन के सामने उस दिन बहुत कुछ बोला, मैंने उसके सामने सारी बातें निकाली कि गलत है और अब मैं ना तेरे को तभी बुलाऊंगा जब मैंने रिकॉर्डिंग कर ली होगी, अब कभी मैं तेरे को ऐसे झूठी तरीके से नहीं बोलूंगा कि आज रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो आ जा जाना, नहीं रिकॉर्डिंग होगी तो मैं तेरे को वो बताऊंगा कि आज एडिटिंग का है, अदरवाइज आई. जोसलिन ने भी उस दिन मुझसे कुछ बातें करी, उसने ओके कहा, वो अपने कमरे में चले गई और मैं अपने कमरे में बैठा रह गया. लेकिन उस दिन जब मैंने वो कन्फेशन किया, दैट वॉज द बिगिनिंग जो मई 29th, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो हमने 90 डेज का चैलेंज शुरू किया था. प्रैक्टिकली वो मई 14-15 से लेकर वो मई 29 के बीच में माई माइंड वेंट इनटू दिस व्हाट इज कि जस्टिन बहुत हो गया, देख हो गया ना, हो गया, तू ब्रेक नहीं यूटिलाइज कर पाया, कोई बात नहीं, कुछ चल रहा है तेरे मन में, आएंगे उस टॉपिक पे, कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज जस्टिन इट्स हाई टाइम यू हैव टू गेट बैक ऑन द हॉर्स। तू स्टोरी टेलिंग नहीं करेगा तो तू क्या है बे, तो तेको अच्छा लगता ना, अच्छा कमरे के अंदर बंद है इसका ये मतलब नहीं है कि कहानियां मन में नहीं बन रही, लेकिन कहानियों को मैं लिख नहीं रहा। मैं हमेशा जब भी मेरे मन में कोई कहानी आती थी तुरंत मेरा एक डॉक्यूमेंट है जिसको मैं खोल करके ना तुरंत उसके अंदर मैं वो कहानी फीड कर देता था कि ये प्लॉट ही अच्छा प्लॉट है, इंटरेस्टिंग प्लॉट है, इस पर कुछ कर सकते हैं। मन में रोज एक दो कहानियां कुछ ना कुछ बन जाती हैं, मैं नहीं लिख रहा उसे, एंड आई फेल्ट इट्स बहुत हो गया। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक 90 डेज का चैलेंज शुरू किया जिसमें दो टारगेट्स थे, हेल्थ को नॉर्मल करना है, करियर को नॉर्मल करना है। हेल्थ पे काम हुआ, काफ़ी अच्छे से काम हुआ, अच्छा लगा, मैं योगा करा तो मेरी बॉडी की काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह बढ़ी। स्क्रिप्टिंग मैंने रेगुलरली तो नहीं करी, इनफैक्ट स्टार्टिंग के कुछ दिन तक करी भी नहीं थी। फिर हम लोग दिल्ली गए और दिल्ली में हम लोगों ने 90 डेज के चैलेंज को कंटिन्यू तो रखा, लेकिन जब वहां से वापस आने का लास्ट सेकेंड डे था तब कुछ हुआ, और यहां से एक किस्सा शुरू होता है पेटेंट का। बट बिफोर वी गो ओवर देयर, इट्स टाइम फॉर आवर सेगमेंट जिसका नाम है मेरे बाबू ने थाना थाया। वेल, ये नाम क्यों है मुझे नहीं पता, पर ये नाम हमारी जनरेशन के लिए बहुत कूल है क्योंकि हमारा यू नो जब हम लोग स्कूल्स में थे, जब हम लोग कॉलेज में थे, तो हमारे लिए जो क्रिंज डायलॉग हुआ करता ना, तब एकदम ताज़ा ताज़ा आया था, मेरे बाबू ने थाना थाया। तो इवन व्हेन वी यू नो यूज्ड टू गो इन अ रिलेशनशिप, अगर हमारा पार्टनर एक्सट्रोवर्ट होता था या फिर थोड़ा छेड़खानी रखने में माहिर होता था, तो यू नो जब थोड़ा सा अपन रूट जाए ना, थोड़ा सा गुस्सा हो जाए, तो हंसाने के लिए आपका पार्टनर आपको कह देता था, क्या हो गया उदास क्यों बैठा है, मेरे बाबू ने थाना था, एंड यू यूज्ड टू बी लाइक चुप कर से क्या, एंड यूज्ड टू लाफ। तो प्रैक्टिकली ना एक मेरे बाबू ने थाना थाया इज़ अ वेरी क्रिंजी प्रॉबेबली, बट इट्स ऑल्सो अ वेरी मेमोरेबल लाइन फॉर मी पर्सनली। सो मेरे बाबू ने थाना थाया इज़ प्रैक्टिकली अ सेगमेंट जहाँ पे हम खाने के बारे में बात करते हैं, खाने से रिलेटेड एक किस्से के बारे में बात करते हैं। सो शुरू करते हैं। तो ऐसा है, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी इस बीच में कि वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट डाइटिंग को काइंड ऑफ बहुत बोरिंग बना देता है, इट इज़ टेस्ट फैक्टर। और काइंड ऑफ टेस्ट में जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मीठा, मीठे के साथ ना आप लाइक एक टाइम के बाद आप बर्दाश्त कर लेते हो, बट अपन देसी लोग हैं यार, आई मीन स्पाइसेस आर काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट एंड ऑल द टेस्टी फूड्स हैव स्पाइसेस। और जनरली जो डाइट वाले फूड होते हैं वहाँ पे, जो मेरे जैसा एक आम आदमी जो अपने मन में मेंटालिटी रखता है, वो यही है कि थोड़े से बोरिंग होते हैं। बोरिंग होते नहीं है, डाइटिशियन से पूछोगे तो दे विल आस्क यू टू मिक्स मसालेज एंड दिस एंड दैट। द पॉइंट इज, आकाश का एक लॉन्ग सेव करके आइटम आता है, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मतलब कर दे तो अच्छी बात है, बट द पॉइंट इज कि आकाश का जो लॉन्ग सेव आता है ना, वॉट एन आइटम। देखो बाबू, सीन क्या है, अगर तुम लोग को बचपन में वो जो मिक्सचर आते थे ना, जो मेहमान के लिए रखे होते थे, उस मिक्सचर में देखना, वो एक बड़े बड़े वाले सेव होते थे ना, जो मोटे मोटे सेव होते थे, अगर तुम्हें वो सेव खाना पसंद है, तो लॉन्ग सेव में बस वही वही है। तो ऐसे इतने ऐसे मोटे मोटे से ऐसे लंबे लंबे से लॉन्ग सेव आते हैं, ठीक है। और अब मैंने आकाश के ट्राई किए तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, दूसरी कंपनीज के भी मतलब डेफिनेटली बहुत अच्छे होते होंगे। द पॉइंट इज कि आई तो लव्ड इट, एंड काइंड ऑफ उस डाइटिंग वाले पीरियड में जब यू नो थोड़ा सा ऐसा लगता था कि यार मसाला थोड़ा सा कम हो रहा है, तो यूज टू जस्ट हैव यू नो लाइक, अब जो लोग ऑडियो में सुन रहे हैं उनको कैसा था, मतलब जैसे चार उंगलियों के साथ आप पांच उंगलियां, मैं एलियन हूं क्या, चार उंगलियां क्या होती है, पांच उंगलियों के साथ जब आप ऐसे थोड़ा सा उठाते हो ना, मतलब मुट्ठी भर के नहीं उठाना, ऐसे थोड़ा सा, तो वो जो एक टेस्ट आपके मुंह में ऐड करता है ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और वो चूंकि बेसन वेसन से बना होता है, तो जब वो आप खाते हो ना, तो इट प्यास सी लगती है, तो प्यास लगती है, पानी पीते हो तो पेट थोड़ा सा और भर जाता है। मेरे बाबू ने थाना था एक एपिसोड में, जस्ट वॉन्टेड टू से आकाश के लॉन्ग सेव मुझे बहुत पसंद आए, आई लव्ड इट। और काइंड ऑफ डाइटिंग के टाइम पे इफ़ यू वॉन्ट टू एड अ बिट ऑफ मसाला इन योर डाइट, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। एंड या जस्ट लाइक दैट, लेट्स रिटर्न टू आर किस्सा ऑफ जून। हाँ जी, तो दिल्ली का ट्रिप और दिल्ली के ट्रिप का लास्ट सेकेंड डे हम लोग सारे कजन्स बैठ करके एक बोर्ड गेम खेले हैं, और वही मोनोपोली, मतलब हमारे कजन्स का ट्रेडिशन है आपस में, तो बैठ के मोनोपोली खेली, उठे सब आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। और चूंकि मैं इस 90 डेज़ के उसमें हूँ और धीरे से मैंने स्क्रिप्टिंग करना शुरू कर दिया, मैं वापस अपने काम में इन्वॉल्व हो रहा हूँ, मैं एक्टिव हो रहा हूँ, फिजिकली शरीर जब हिलता है तो थोड़ा सा अच्छा भी महसूस होता है, तो मेरा दिमाग एक बहुत पुराने आइडिया पे गया, एक ऐसा आइडिया जो मैंने काइंड ऑफ 2020 में या तो 21 की शुरुआत में सोचा था। ये एक बोर्ड गेम से रिलेटेड था, लेकिन तब एक ढांचा लेस आइडिया था, ये कोई फिगर नहीं, कुछ नहीं, कोई सर नहीं, पैर नहीं, हाँ कुछ ऐसा करना है बस इतना सा। लेकिन जब उस दिन आई थॉट अबाउट इट तो कुछ चीज़ें जुड़ने लगीं, और ऑब्वियसली अगर मैं हूँ तो उस बोर्ड गेम में स्टोरी तो ऑब्वियसली इन्वॉल्व है, तो इट्स लाइक अ स्ट्रैटेजिक रोल प्ले, पता नहीं क्या होगा। तो सोचा मतलब जाने दिया, अपन भोपाल वापस लौट गए, 90 डेज का चैलेंज इज कंटिन्यूइंग, एक्सरसाइज रेगुलरली चल रहा है, स्क्रिप्टिंग भी धीरे धीरे काफ़ी अच्छी होने लगी है, और जुलाई 28 तारीख को मुझे नहीं पता क्या हुआ, मुझे बस इतना पता है कि मैं सडनली अपने आईपैड में स्क्रिबल करने लगा। मैं कुछ आइडियाज़ थे मेरे पास, एंड आई स्टार्टेड राइटिंग देम डाउन। जब वो ज़्यादा होने लगा तो मुझे रियलाइज़ हुआ यार इसको प्रिंटेड फॉर्मेट में करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने तुरंत कंप्यूटर के अंदर लॉगिन किया और मैंने डॉक्यूमेंट फाइल खोली और मैंने उसके अंदर लिखता गया। 28th of June, 29th of June एंड 30th of June मैंने अराउंड 45 या शायद कुछ, मुझे नंबर ऑफ पेजेस याद नहीं आ रहे, मैंने उतने कुछ लिख डाले, और वो सेट ऑफ रूल्स के साथ सडनली वो जो गेम एक गेम था, मनगढ़ंत सा गेम था, इट वॉज नॉट रियली एनीथिंग रियल, इट काइंड ऑफ स्टार्टेड लुकिंग रियल। मुझे समझ नहीं आया यार, वेट अ सेकेंड, एम आई हैविंग अ बोर्ड गेम इन माई हैंड्स, क्या ये वाकई में वर्क कर सकता है? तुरंत मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाया, तो मुझे उस दोस्त से बात नहीं करनी थी, मुझे उसके पापा से बात करनी थी, सॉरी समर्थ। समर्थ के पापा जो हैं, ही इज़ अ पर्सन जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कंपनीज एंड स्टार्टअप्स और CAs के साथ मिलकर पेटेंटिंग स्पेशली जैसे टॉपिक्स पे काम किया है। अंकल रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो अंकल एकदम मेरे पापा जैसे हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी शांति से बैठना नहीं है। तो मेरे को अंकल से बात करनी थी, मुझे जाना था कि अंकल मुझे अगर इस तरह का एक पेटेंट निकालना है तो क्या आपके पास कोई आइडिया है? अंकल के पास कुछ बहुत बेहतरीन सजेशंस थे, विच काइंड ऑफ लेड मी टू द राइट ट्रैक। अब जब, और पता है मैंने ना वो जब पेटेंट की बात हो रही थी ना, तो मैंने काइंड ऑफ शुरुआत में, क्योंकि अंकल इज़ अ वेरी प्रोफेशनल पर्सन, लाइक ही चार्जेस एंड स्टफ, तो मैंने अंकल से ना बड़ी इज्जत और शर्म के साथ मैंने पूछा था कि अंकल मुझे एक हल्का सा आपका जो कंसल्टेंसी रेट है आप, और मैंने ये बोला था और अंकल ने ना मुझे खूब डांटा, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उस डांट में ना एक वो थी कि तो पैसों की बात कर रहा तू, इतना बड़ा हो गया तू, अगर ये ना गिनी नहीं थी। फिर अंकल ने मुझे गाइड किया, मुझे सही तरीके से गाइड किया, मुझे कुछ बातें बताई, उन्होंने मुझे कुछ किसी के साथ कनेक्ट किया जो शायद उस फील्ड में मेरी ज्यादा मदद कर सकता है। कहानी तो आगे बढ़ी, पेटेंटिंग बाय द वे इतनी ज्यादा महंगी नहीं होती, हो जाता है कम बजट में भी, लेकिन पेटेंट के साथ हमें कुछ प्रोटोटाइप्स भी डेवलप करने थे, प्रैक्टिकली कुछ फिजिकल प्रोटोटाइप्स। तो वो सब करने गुराने में इन शॉर्ट कहानी कुछ ऐसी है कि 97,000 का खर्चा था, मेरी जेब में थे 6,500 रुपये, 500 रुपये मैंने थोड़े और अपनी जेब में जोड़ लिए, बाकी 90 कमाने के लिए मैं क्लाइंट्स के साथ काम करने चला गया। तो जून 28 तारीख के बाद, कुछ दिनों के बाद, मैंने कुछ क्लाइंट्स को पकड़ा और पूरा जुलाई और नियर टू लाइक सम टाइम ऑफ अगस्त ऑल्सो मैं सिर्फ उस क्लाइंट के काम के पीछे लगा हूँ ताकि वो 90,000 में जनरेट कर पाऊँ। वो पैसे वहाँ से आए, पैसे के आते ही साथ मैंने उसको जहाँ जहाँ पे लगाना था, डॉक्यूमेंटेशंस करने थे, वो सारे के सारे कर दिए, प्रोटोटाइप जनरेट कर दिया, और इस प्रोटोटाइप के साथ हमने एक बहुत ही प्रोटोटाइप सा एक ऐप भी जनरेट किया ताकि कल को अगर हमें गेमिंग को कॉपी, मैंने बोला ना 6 अलग अलग कॉपीराइट्स होते हैं जिनको टोटल एक्वायर करना था। अगस्त मिड के आसपास तक गाड़ी अच्छी खासी होने लगी और मैंने तब एक वीडियो बना के अपलोड किया, विच वॉज द कंक्लूजन ऑफ 90 डेज, जिसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैंने पेटेंट कर लिया है करके, आप लोगों के कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस आए, थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, राइट? लाइक मैं वापस आ गया ना, मैं करियर में वापस हो गया ना, सेटअप स्टेबल एकदम सा। यू रिमेंबर इस कहानी में मैंने बार बार आपसे कहा था कि कुछ था जिसे मैं इग्नोर कर रहा था, उसे इग्नोर मैं कर पा रहा था क्योंकि काम में उलझ रहा था, पैसों में उलझ रहा था। लेकिन अब सडनली यू नो वो पेटेंट हो चुका था, अब मुझे वापस अपने करियर पे लौटना था और मैं करियर पे आया भी और यू नो मैंने वीडियोस वगैरह सब बनाए भी ना। लेकिन 15 अगस्त हो चुकी थी और बिफोर ऑल ऑफ दिस, बिफोर पेटेंट, मेडिकल प्रॉब्लम, टेडेक्स, अकाउंट का वायरल होना, लास्ट ईयर सितंबर में आई वेंट थ्रू अ ब्रेकअप। कोई बड़ी बात नहीं, बहुत लोगों की ज़िंदगी में होता है, तो इसमें कोई और वाला मोमेंट नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। और ये टॉपिक इसके बारे में है भी नहीं कि वो कौन थी, उसने गलत किया कि नहीं किया, नहीं नहीं नहीं, मेरा एक मानना है रिलेशनशिप दो लोगों की कहानी होती है, ठीक है। तो किसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए आप कोई अपने पास्ट का एक्सपीरियंस का कोई सिचुएशन कर रहे हो, दैट्स डिफरेंट, बट ये आप दो लोगों की कहानी है, इसमें क्या सही था क्या गलत था ये यूनिवर्स जानता है, इट हैज़ नथिंग टू बी डिस्कस्ड अबाउट। ये बहुत मेरे को अच्छा नहीं लगता इस पर बात करना। बस मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि 2020 में जो मेरा एक ब्रेकअप हुआ था, जो एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप था, तब मैं ना मैच्योर हो चुका था, क्योंकि ना मैंने मैंने रियलाइज़ किया था कि मुझे ब्रेकअप इतना ज़्यादा इफेक्ट इसलिए किया बिकॉज मैं प्रिपेयर्ड नहीं था उसके लिए। तो 2020 में अपन ने एक चीज़ डेवलप करी अपने अंदर कि आई विल ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट, एंड आई वॉज वेन आई वेंट इन टू दिस लास्ट रिलेशनशिप ऑफ माइन, आई वॉज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, ऐसा मुझे लगा। एंड दैट ब्रेकअप हैपन्ड एंड मैंने कहा नहीं नहीं, अब तो अपन मैच्योर हो चुके, अब तो ऐसी बातों पे कोई वो फोकस नहीं करना है। और आखिरी कन्वर्सेशन में मैंने बोला भी था कि नहीं नहीं मैं कुछ अपनी लाइफ में आई विल बिकम स्ट्रॉन्ग, आई विल डू समथिंग बेटर, और फिर किया भी ना बेटर। अक्टूबर में मेहनत करी, नवंबर में अकाउंट वेंट वायरल, दिसंबर में एवरीथिंग इज हैपनिंग, टेडएक्स एंड स्पीचेस एंड यू नो कॉलेजेस बुला रहे हैं, सब बढ़िया हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पे ना आप एक चीज़ रियलाइज करते हो, अगर आप एक कैजुअल रिलेशनशिप में थे ना, जहाँ पे, या फिर आप वो इंसान थे जिसने शायद प्रोबेबली ब्रेकअप किया, तो पीस पाना कंपैरेटिवली काफ़ी इजी होता है बिकॉज इट वाज योर कॉल, या फिर यू वर ऑलवेज कैजुअल, इट वाज चिल। बट व्हेन यू आर द पर्सन हु इज डंप्ड, इट हाउ डू आई पुट इट, आपको खुद से बात करनी होती है क्योंकि आप उदास होते हो, आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये सारी बातें ना बहुत फालतू है कि आप मैच्योर हो गए हो, अब तो ये नहीं, मैच्योर होने का मतलब ये नहीं होता कि आप प्रॉब्लम को इग्नोर करना शुरू कर दो। मैच्योर होने का मतलब होता है कि हाँ बता ना, तो क्या दिक्कत है, हाँ इधर आ, हाँ बता क्या हो गया, हाँ ठीक है, अपन फेस करते हैं प्रॉब्लम को। पर मैं इग्नोर करने लगा। And as I'm again saying, you know, God bless her, and I hope that decision was a good decision for her life. And uski jo naye dost rahe, naye friend circle raha, koi naya boyfriend, definitely she must have a boyfriend because she's a great person and everything, all good, all good, all good. The point is that person moved on, but main move on karne ke badle ignore kar raha hu us baat ko, daba raha hu us baat ko. And that's when I realized that this was the longest I have ever been single. मैं अपनी लाइफ के 14 साल बॉय स्कूल में था, तो मैं सिंगल ही था, तब सिंगल नहीं रहता तो मतलब मेरे सेक्सुअल प्रेफरेंस पे एक बहुत बड़ा सवाल उठ सकता था। बट द पॉइंट इज़ कि मैं जब कॉलेज में आया तो मैं सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर सिंगल रहा था, उसके बाद से आई हैव बीन इन रिलेशनशिप, एक 3 महीने चला, एक 5.5 साल चला, लास्ट 3 ईयर्स। बट हमेशा क्या होता था, एक रिलेशनशिप खत्म होता था तो विद इन 3-4 मंथ्स मैं किसी और से बात करने लगता था। मैं हमेशा यू नो आई यूज़ टू गेट बैक ऑन द गेम, नॉट इन डेटिंग गेम, टॉकिंग गेम, फ्रेंड्स वाला गेम, सर्कल वाला गेम। इस बार आई डिडंट, आई जस्ट डिडंट, आई डोंट नो व्हाई, शायद इसलिए कि मैं करियर में बिजी हो गया था, नहीं शायद इसलिए कि मैं डर गया था, हाँ शायद इसलिए कि पहली बार लाइफ में ऐसा फील हुआ कि एक बहुत मैच्योर रिलेशनशिप में थे पर ये भी वैसा ही निकला एंड में, क्या इस कारण से डिसअपॉइंट हो गए थे? हाँ, लेकिन क्या इसका ये मतलब है दैट जो मतलब क्या है कि मैं ना कभी अपनी लाइफ में कभी किसी लड़की को मैंने प्रपोज नहीं किया है ऐसे करे। एक ही लड़की थी, पहली और आखिरी लड़की जिसको मैंने प्रपोज किया था, उसने मुझे रिजेक्ट किया था। लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट किया इसलिए मैंने ये डिसीजन नहीं लिया था कि मैं कभी किसी को प्रपोज नहीं करूँगा। इट वॉज समथिंग डिफरेंट, वो बात एक अलग किस्सा है। बट द पॉइंट इज आई हैव ऑलवेज बीन द गाय जिसको बंदी ने प्रपोज किया एंड आई हैव ऑलवेज बीन द गाय जिसको बंदी ने डंप किया। मैं ना तो रिलेशनशिप में आते समय मेरा कॉल रहता है ना जाते समय मेरा कॉल रहता है, तो बड़ी गुस्सा सी आ जाती है, बड़ी फ्रस्ट्रेशन सा हो जाता है। एंड इस बार पता नहीं क्यों मैं बैक इन दैट गेम नहीं उतर रहा। शायद उस बीमारी के कारण जो मैं अपने घर के अंदर कैद हो गया, शायद उस कारण से जो मैं बाहर जा सकता था, जो मैं इंडिया टूर कर सकता था, उस दौरान मैंने लोगों से मिल सकता था, शायद वो सब चीज़ें मैंने नहीं करी। शायद आई डोंट नो, बट ऑल इन ऑल टाइम हो चला है रात के 2 बजे और अगस्त 15 हो चुका है, मतलब वो अपने 15 अगस्त सेलिब्रेट कर लिया है। और रात के 2 बजे एक दिन एक रात अचानक से कुछ होता है। वो क्या होता है उसे जानने से पहले इट इज टाइम फॉर आर नेक्स्ट सेगमेंट जिसका नाम है एक गाना भेजना यार। तो ये सेगमेंट है एक गाने के किस्से के लिए। तो देखो भाई, यहां पे मैं बता देता हूं आज हम जिस गाने को मेंशन करने वाले, मैं एक गाना शेयर करता हूं जो मुझे अच्छा लगा, लेकिन उस गाने के साथ किस्सा जुड़ा होना चाहिए। तो भैया अपेरेंटली आज से 1 साल पहले मेरा एक लाइव सेशन हुआ करता था अपनी शाम अपनी बातों के नाम से, जो मैं लूँगा कुछ दिनों में, मैं दोबारा से लूँगा। उस लाइव सेशन में मैं बैठकर लोगों से बात किया करता था, हम लोग गेम्स खेलते थे। तो उसमें एक लड़की ने मुझे एक गाना सजेस्ट किया था, गाने का नाम स्ट्रॉबेरीज एंड सिगरेट्स। मैंने वो गाना, इतना अतबना सा टाइटल, मैंने कहा यार मुझे तो इसको लाइक सुनना तो पड़ेगा। आई लिसन टू द सॉन्ग, सॉन्ग वॉज वेरी वेरी गुड, आई लव दैट सॉन्ग। तो मैंने उस बंदी से कहा था कि लिसन, घर के रेडियो में आई एम डेफिनेटली मैंशनिंग दिस सॉन्ग, दिस इज अ वेरी गुड सॉन्ग। और उससे बात बात हुई, ठीक है, बस ये नहीं पता था कि 1 साल बाद अगला घर का रेडियो का एपिसोड आएगा। तो वहाँ से 1 साल का वेट हुआ एंड वट हैपेंड इज कि 1 साल के बाद मुझे गाने का टाइटल याद है, मुझे लड़की याद नहीं है। तो यस्टरडे आई अपलोडेड अ स्टोरी वेयर आई आस्क्ड कि प्लीज़ अगर वो, और मुझे ये भी नहीं यार, मैं इतने टाइम से एक्टिव भी नहीं हूँ, है ना, एक हुकुम्बा दो के लिए इतना वेट भी करवा दिया, हो सकता है पिस ऑफ हो गया हो जो भी मतलब ऑडियंस मेंबर था और वो मुझे अनफॉलो कर दे। लेकिन उसका मैसेज आया एंड दिस वॉज काइंड ऑफ हर रिप्लाई एंड मैं इतना खुश, मैं कहा यार वो लड़की मिल गई एंड आई एम एबल टू कीप माई प्रॉमिस। सो This is Soumya and usne jo gana bheja tha, that is Strawberries and Cigarettes. It's her recommendation and I personally loved it. Now, Soumya, tera soundtrack maine recommend kar diya, but it's now time for my soundtrack. Pichle kuch dinon mein, yaar meri behan ne mujhe kuch dinon pehle ek gana sunaya tha. Jhumka, jo abhi wala hai. Main samajhta hoon, bahut log kehte hain remake nahi karna chahiye gaanon ke. In fact, kai jagahon pe main bhi agree karta hoon. Par This was good. This was good. मैं नाचा हूँ, मैं इस 100 किलो के शरीर के साथ थुनथुनाते हुए नाचा हूँ, मुझे बहुत पसंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। So the two songs for एक गाना भेजना यार are Strawberries and Cigarettes and Jhumka. It's time to continue our kissa. तो ripple हो गया, patent हो गया and it's time for इश्किया. रात के 2 बजे सडनली आई एम कॉट इन अ वॉर्टेक्स ऑफ ओवरथिंकिंग। मैं एक स्टोरी टेलर हूँ, ट्रस्ट मी ऑन दिस। इफ यू थिंक यू हैव लाइक ओवरथिंकिंग का प्रॉब्लम एंड यू आर नॉट अ स्टोरी टेलर, फील ब्लेस्ड। एक स्टोरी टेलर, एक राइटर, यू नो यार, जिनका काम ही कहानियां बुनना है, इमेजिन करो हम ओवरथिंकिंग में किस लेवल में बुनते हुए चले जाते हैं। इट्स हॉरिबल, इट्स नॉट समथिंग टू फील ऑसम अबाउट, दिमाग एकदम हालत ख़राब करके रख देता है। एंड आई वेंट इनटू दिस क्रेजी वॉर्टेक्स, आई डोंट नो, आई गॉट इमोशनलाइज्ड। मेरे को बात करनी थी यार खुद से। अब रात के 2 बजे ये शुरू हुआ, ठीक है, 2 बजे सन्नाटा हो जाता है यार हर जगह, मैं कॉलोनी में रहता हूँ। अब मैं कमरे के अंदर खड़े होकर मैं बात करना चाहता हूँ, मैं बात कैसे करूँ, मैं मेरे को वैसे बात करनी कि मैं इस आवाज़ में बात करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे करके अगर मैं बात करूँगा तो पीछे लोग रहते हैं यार, मतलब सबको थोड़ी सुनाना है, और बात भी ऐसे थोड़ी करनी है कि कोई ऐसी बात हो जो मैं सबको सुनाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ खुद के साथ करना चाहता हूँ। मैं अपने घर की छत पर ना बहुत कंफर्टेबल महसूस करता हूँ, लेकिन मैं वहाँ भी नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ चला गया, वहाँ तो पूरा कॉलोनी सुनेगा इकट्ठा खड़े होकर के, मतलब वहाँ तो लाउड स्पीकर की भी ज़रूरत नहीं यार, खुला आसमान है, आवाज़ें हर जगह हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं अपने कमरे के अंदर घूमने जा रहा हूँ, मेरा कमरा ना बहुत छोटा सा कमरा है, यहाँ से शुरू होता है वहाँ ख़त्म हो जाता है, मैं यहाँ पर चले जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या बात करूँ, खुद से 3:10 हो रहे थे, मुझे टाइम अच्छे से याद है 3 बजे। एक तो वो कहते हैं ना कि भाई भूत भूत आते हैं, भूतों का समय होता है, तो दिमाग ख़राब वहाँ हो रखा है, और 3:10 पे मुझसे नहीं हो पाया यार, मैं चुपचाप। और प्लीज़ अगर मम्मी ये घर का रेडियो का एपिसोड सुन रही है तो पैनिक मत होना, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता इस मोमेंट पे, इस मोमेंट की इंटेंसिटी बताने के लिए वो टाइम बताना बहुत ज़रूरी है, तो सॉरी मम्मी, लेकिन 3:10 पे मैं चुपचाप नीचे गया, दरवाज़ा खोला, हमारे घर में 2 दरवाजे, दूसरा दरवाज़ा चुपचाप खोला। अब तो बाहर जा भी नहीं सकते से चुपके क्योंकि दरवाज़ा जाम रहता है, बारिश का मौसम आ गया ना तो वो फूल जाती ना लकड़ियाँ। मैं बाहर निकला, मैंने चप्पल पहने और मैं निकल गया घर से बाहर, और मैं चलता चलता मेरी कॉलोनी से बाहर अगर मैं राइट साइड की तरफ जाऊँ तो वहाँ एक बड़ा सा ना एक पार्किंग लॉट एरिया है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वहाँ पे कोई कुछ नहीं है, खाली सी ज़मीन है और स्ट्रीट लाइट्स लगे हुए हैं, तो लाइटेड एरिया भी है। मैं वहाँ गया, और शायद पिछले सितंबर की बात है, ये सब जो दिमाग में चल रही है, मैं अगस्त के महीने में, यानी 1 साल होने वाला है, अगस्त के 1 महीने बाद सितंबर का महीना है, मैंने खुद से बात करना शुरू करी। मैंने खुद से सिर्फ प्यार से बात नहीं करी, मैं खुद पे चिल्लाया भी, खुद को गालियाँ भी दी मैंने, बहुत बहुत बुरी बुरी गालियाँ दी, मतलब वो मैं आप बता नहीं सकता, पॉइंट इज मैं बहुत चिल्लाया खुद पे, मैंने समझाई खुद को चीज़ें, मैंने कहा यार वो मैच्योर इनफ थी, उसने उसको लगा कि उसकी लाइफ में एक बेटर डिसीजन है, उसकी लाइफ में एक बेटर पाथ आ सकता है, शी टुक हर डिसीजन, यार सही गलत है भाड़ में जाए वो सब, वो आगे बढ़ गई ना, तो क्या पागल बैठा है क्या, और उसके ऊपर से शी इज़ ऑल्सो यंगर देन यू एंड शी इज़ डूइंग अ मच मोर मैच्योर एक्टिविटी, तू 1 साल से पता नहीं क्या खुद को बंद करके बैठा है, तो हमेशा लोगों के पास जाता था ना, बात करता था ना। अच्छा क्यों मैंने वो प्रपोजल वाली बात आप लोगों को कुछ टाइम पहले बताई थी कि रिलेशनशिप वाली, 2022 तक मैं 3 रिलेशनशिप्स में रह चुका हूँ जिसमें बंदियों के प्रपोजल्स आए, और उनके अलावा मेरे पास 7 और प्रपोजल्स आए इस शक्ल के पास, खाली जेब के पास, इसलिए मैं जब भी कहता हूँ बाबू आपकी शक्ल सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन के लिए काफ़ी होती है, अगर फर्स्ट इंप्रेशन नहीं कोई बात नहीं, आप अपने बात करने के तरीके को डेवलप करो, आप काइंड ऑफ यू नो एक अपने अंदर कोई स्किल डेवलप करो, उस स्किल के बहाने से जब कोई आपके बगल में आके बैठेगा ना फिर उससे बात करना, और जब आप तमीज़ से बात करते हो, जब आप अच्छे से बात करते हो किसी से, जब आप रिस्पेक्टफुली उसे सुनते हो, उसको जज नहीं करते, तो वो भा जाता है, वो मतलब आप उसको भा जाते हो, वो इंसान आपको पसंद करता है, नहीं है आपकी शक्ल अच्छी, देखो मेरी शक्ल देखो, इस शक्ल के साथ 3 रिलेशनशिप में कोई बंदा जाता है क्या, है इस शक्ल वाला बंदा कह रहा है कि मैं ज़िंदगी में पहली बार इतना लंबा सिंगल रहा, क्या क्या फुद्दू बात है, बट द पॉइंट इज व्हेन आई से दैट लुक्स डोंट मैटर, व्हाट आई मीन इज फर्स्ट इंप्रेशन लुक से मिलती है, मुझे पता है पहली बार किसी का आपके बगल में आके बैठना लुक से मिलता है, मुझे पता है, लेकिन आपके पास अगर लुक्स नहीं है ना, तो मैंने तो कॉलेज में अपने आप को एकदम खुल के एक्सप्लोर किया है, तो मैंने तो भाई अपने सारे टैलेंट दिखा दिए, मैंने माइक पर चढ़कर बातें करना शुरू कर दी, मैं स्कूल में ऐसा नहीं था, स्कूल में आई वॉज अ नोबडी, और वो गलती मैंने कॉलेज में नहीं करी, और कॉलेज में जब गए तो उसका रिजल्ट भी मिला, लोगों को पसंद आया मैं, तो द पॉइंट इज टोटल 10 प्रपोजल्स हैं मेरी ज़िंदगी के 2020 के नवंबर से पहले तक। अब देखो नवंबर के बाद ना एक इन्फ्लुएंसर इन्फैचुएशन हो गया था, बिकॉज 1 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं तो पीपल स्टार्टेड टू हैव दिस, मैं समझ रहा था उस चीज़ को, तो उसके बाद जो मुझे प्रपोजल्स आए या जो फ्लर्टेशंस आए मैं उसे काउंट नहीं करता, बिकॉज वो मुझे वेल डिजर्व नहीं लगते, वो मुझे अर्नड नहीं लगते, क्योंकि पहले ना जो प्रपोजल्स आते थे वो कुछ है ही नहीं ना मेरे पास देने के लिए, ना शक्ल है ना जेब में पैसे हैं, तो वो मेरे लिए आते थे, वो मेरी पर्सनालिटी के लिए आते थे, लेकिन अब जो आते हैं मुझे वो पता है कि वो जो मेरे फॉलोअर्स का नंबर दिख रहा है उसके एक इन्फैचुएशन में, तो इसलिए अब मैं उसे काउंट नहीं करता। बट मैंने उस खाली सड़क में खड़े होकर खुद को गालियां दी, जिसने इतने जब तुझसे लोग कोई बात करना चाह रहा है तो बात भी तो नहीं कर रहा किसी से, मैं किसी से बात नहीं कर रहा, मैं किसी के साथ भी एक कन्वर्जेशन होती है और मुझे लगता है कि दैट कन्वर्जेशन इज़ यू नो बिकमिंग अ बिट फ्रेंडलियर, तो मैं डर जाता हूँ, तो मैं फिर बात नहीं करता, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं यू नो ऐसे करके मैं बिना बात किए इस अगले इंसान के साथ कुछ कुछ वक्त रहूँगा तो ये इंसान जो है ना मतलब एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि यार इसके पास टाइम नहीं है करके, क्योंकि मैं वापस फिर से वो दोस्ती, फिर से वो टेक्सटिंग और फिर से यू नो कुछ सालों के बाद अगले का कहना इट्स नॉट यू इट्स मी नहीं हो पाएगा, वो एक खूब गालियां दी उस दिन मैंने खुद को, खूब बातें करी उस दिन मैंने खुद से, बहुत सारी बातें करी, चलता चलता उस पार्किंग लॉट में खुदा जाने किस बातें किए जा रहा हूँ किए जा रहा हूँ किए जा रहा हूँ किए जा रहा हूँ, वहाँ कोने में कहीं एक गार्ड अंकल भी बैठे हुए थे, बीच बीच मुझे देख रहे थे, पर फिर पता नहीं उन्होंने कुछ कहा नहीं, पता नहीं नॉर्मल है क्या कि अक्सर कोई आता है वहाँ पे और कुछ लोग अपनी भड़ास निकाल के चले जाते हैं क्या पता, बट उन्होंने कुछ नहीं कहा मुझे। करीबन एक घंटा हो चुका है मैं वहां पे बात किए जा रहा हूँ खुद से, मैं चले जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं हील हो गया, लेकिन हाँ उस दिन पहली बार एक साल में पहली बार जब मैंने खुद से उस बारे में बात करी तो थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा सा अच्छा लगा। फिर मैं वहां से चलता हुआ आगे निकल गया, आगे गया तो वहां से मैंने एक राइट ले लिया, और हमारे वहां से अगर राइट लेके निकल जाओ तो अपना सांची के रास्ते पर जाते हो जो भोपाल से नहीं है। सांची स्तूप के बारे में अगर आपने कभी सुना हो तो भोपाल से काफी पास पड़ता है, उसका एक रास्ता है भोपाल से लगा हुआ, मैं उस रास्ते पर निकल गया, उस रास्ते पर शहर आता है, मैं शहर से आगे निकल चुका हूं, मुझे पता भी नहीं है, मुझे पता नहीं मेरे आसपास क्या, मैं बस चले जा रहा हूं, मैं खुद से बातें कर रहा हूं, मन में सोच रहा हूं और पीछे से एक आवाज आती है। ये आवाज किसकी थी, कौन था? ये हमारे इस सीरीज के आखिरी सेगमेंट के बाद, इस सेगमेंट का अभी तक तो कोई नाम नहीं लेकिन जरूर एक नाम होगा, कुछ JT8 फैमिली से ही रिलेटेड होगा। खैर इस सेगमेंट में मैं आप में से किसी एक के किसी ऐसे आर्ट को यहाँ शोकेस करने की कोशिश करता हूँ जो मुझे जेन्युइनली इम्प्रेस किया, और बहुत सरप्राइजिंग है कि मैं पोएट्री को यहाँ फ्रेम कर रहा हूँ, बिकॉज पोएट्री मुझे बहुत बोरिंग लगती है, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि राइम कर देना इज नॉट पोएट्री, पोएट्री हैज़ टू समथिंग लाइक व्हेन यू से समथिंग आई शुड फील इट। पर ट्रस्ट मी, अगेन आज से नियर टू एक साल पहले किसी क्लब हाउस या तो पता नहीं किसी रूम पे हम लोग साथ में बैठे हुए थे, और एक लड़का है, इस लड़के ने आके एक अपनी पोयम का नरेशन किया, और मैंने तब इससे कहा मुझे इसका वीडियो चाहिए, वो मुझे इसको रिकॉर्डेड करके कहीं से भी भेज, मैं इसे घर के रेडियो में फीचर करना चाहता हूँ। उसने बड़ी खुशी के साथ भेजा, अगेन मुझे नहीं पता था कि अगला घर का रेडियो एक साल बाद आएगा, मेरे पास उसका मेल पड़ा था, हर्षो को जब मैंने मैसेज किया तो दिस वॉज हिज रिस्पॉन्स, ही वॉज वेरी स्वीट, इज वेरी 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 स्वीट गाय, एंड दिस इज नॉट जस्ट हिज पोएम, दिस इज हिज इमोशन, परेशान बड़ा रहता है ये, सुनिए।
हर्षु यार परेशान बहुत रहता है तू आजकल, क्यों समझाता है लोगों को तू अपने ख्वाब और ख्वाहिशें आजकल, कब कैसे और क्यों में ही उलझा सा रहता है, शामों में उदास और रातों में अकेला सा रहता है, क्या तुझे याद है वो घड़ियां जब तुझे फिकर किसी बात की नहीं थी, क्या तुझे याद है वो घड़ियां जब तुझे फिकर किसी बात की नहीं थी, वो बेवजह हंसना, एस्ट्रोनॉट बनने का वो सपना, 5th क्लास की वो पहली क्रश और उसके पीछे की सीट खाली मिल जाए, एक यही ख्वाहिश रखना, अब तो यार तुझे खुश होने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, कोई पसंदीदे शख्स से बात या फिर अपने पुराने किस्सों से एक बार फिर मुलाकात करनी पड़ती है, एक वक्त था जब घर में सबका एक ही सवाल होता था मुझसे, एक वक्त था जब घर में सबका एक ही सवाल होता था मुझसे, कुछ खाया तूने, और माना आप खा सकता हूं मन पसंद का कुछ भी, लेकिन वो सवालों के बिना भूख नहीं लगती यार, अब हो गया ना बड़ा, यही तो चाहता था तू हमेशा से, अपनी मनमानी करना, घर से दूर रहना और सब कुछ अपने मुताबिक करना, फिर क्यों खुश नहीं रहता तू आजकल, हर्षू यार परेशान बहुत रहता है तू आजकल।
तो मेरे डियर हर्षू, तो इतना परेशान मत रहा कर मेरी जान। इतना लाइक व्हेन आई वाज लिसनिंग टू दिस आई वाज लाइक क्योंकि यार है यार इसमें जो बातें इसने कही हैं उसमें कुछ जगहों पे आप फील कर जाते हो कि यार बड़ा होना वाज सपोज टू बी ऑसम ना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बच्चा होना चाहता हूँ, मैं तो बड़ा होके ही खुश हूँ, बट हर्षो इमोशनल कर दिया यार। मैंने एक साल पहले भी जब सुना था तब भी इमोशनल था, आज जब मैं सुन रहा हूँ मैं आज भी इमोशनल हूँ। एंड ब्यूटिफुली रिटन, ब्यूटिफुली रिटन, ब्यूटिफुली नरेटेड। बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा सा कम कर इसका, इसको एक अच्छे से और दोबारा से रिकॉर्डिंग कर। एंड आई थिंक यू शुड जस्ट यू नो, बहुत खूबसूरत लिखा है यार। दिस इज़ द मैक्स दैट आई कुड डू एंड आई होप तेरा तेरी जो ये स्किल है। एंड बाय द वे ही राइट्स, हाँ, सो डू चेक आउट हिज प्रोफाइल, गिव हिम अ मैसेज, टेल हिम हर्षू परेशान मत रहा कर यार। love this kid yaar, I really love him. So now the story continues to the last part of our today's podcast. What is the conclusion and what happened? Kaun tha wo gaadi mein baitha insaan? Aur pata chalega. Main yun piche aise mud ke dekhta hu to police ki ek gaadi hai aur wahan pe ek uncle jo hai mujhe dekh rahe hain. कहाँ? मैं ऐसे खड़ा हूँ, ऐसे मतलब चल रहे हैं करके, वहाँ पे ऐसे देखा, अच्छा थोड़ा साइड से चलना बेटे, हाँ ट्रक्स वहाँ पे बहुत चलती हैं करके कहा। मैंने ठीक है कहा, मतलब मैं उस टाइम अपने थॉट्स में इतना इन्वॉल्व था, अगर मैं उस टाइम अपने थॉट्स में इन्वॉल्व नहीं होता, मेरे बगल में अगर कोई पुलिस वाला आके खड़ा है भाई, पता नहीं क्यों मेरी तो फट जाती है। मुझे डर है, पता नहीं क्यों डर है, डरना नहीं चाहिए यार, देयर फॉर अस राइट, बट है डर, क्या करूं मैं। पर मैं उस टाइम इतना खुद में इन्वॉल्व था, मैं एकदम रिलैक्स था, कूल था, चिल था, और वहाँ पे अंकल ने आके ऐसे पूछा। हाँ फिर अंकल ऐसे गाड़ी ऐसे थोड़ी आगे बढ़ी, फिर से ऐसे रुकी, मैं आगे चल रहा था, ऐसे देखे मुझे, नशे वशे तो नहीं किए ना? तो मैंने कहा नहीं अंकल, चेक कर लीजिए। तो हंस दिए, बोले ठीक हो? अगर उस टाइम पे वो लाइन कोई मेरा दोस्त या कोई मेरे को जो पर्सनली जानता है मेरा बोल देता ना यार, मैं टूट जाता यार, मैं टूट जाता, मैं साला मैं रो देता, सच्ची बता रहा हूँ। कि मैं बहुत कुछ बोलने का मन किया उसके उनके उस क्वेश्चन पे, लाइक ठीक हो? नहीं हो ठीक, लेकिन थैंक यू फॉर आस्किंग, लव यू अंकल। मैं क्या बोलूँ मैं? मैंने कहा हाँ, नहीं, बढ़िया बढ़िया है, मैं बस ऐसे थोड़ा सा, अल्लाह चलो ठीक है। वो वहाँ से उनकी गाड़ी आगे चली गई और उनके ठीक हो को लेकर मैं बैठा रह गया। लेकिन शायद शायद मैं थोड़ा सा ही सही ठीक था। उस दिन पहली बार खुद से बात करी और उसी के साथ जब मैंने आसपास देखा तो खेत आ चुके थे भाई, बहुत आगे निकल गया था मैं शहर वहर पीछे छोड़ के खेतों के कहीं पास चला गया था। फिर वहाँ से मैंने वापस चलना शुरू किया, कुछ टाइम के बाद मुझे वहाँ पे सुबह एक ऑटो चल रही थी वो भी मिल गई, तो आई सैट ऑन दी ऑटो एंड आई क्या मतलब पास में आया मैं अपने घर के, फिर वहाँ से मैं चल के वापस अपने घर आ गया। वो पहला दिन था। उसके बाद मैंने अपने करियर पे दोबारा से काम किया, मैं वापस आप लोगों के बीच में एक हुकुमबा दो लेके आया, मैंने आपके बीच में दैट वन पेज लेकर आया, मैंने ट्रेलर लेकर आया, आज घर का रेडियो का एपिसोड आ रहा है। क्या मैं एकदम बढ़िया हो चुका हूँ? क्या मैं एकदम, हाँ मैं हंस रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, खुल के हंस रहा हूँ, मैं अग्री करता हूँ इस बात से। क्या मैं पूरी तरह से यू नो, नहीं, लेकिन लॉट बेटर। अगर कहीं भी किसी कोने में आप बैठे हो और ब्रेकअप ऑनेस्टली ना कभी इतना हर्ट नहीं करता, हर्ट करता है मेरे जैसे लोगों को, जब उसूल ये है ना हमारा कि बेस्ट फ्रेंड होगी और बेस्ट फ्रेंड प्रपोज करती है और फिर हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जब ब्रेकअप होता है ना तो बेस्ट फ्रेंड चले जाता है, गर्लफ्रेंड चली जाए चलेगा यार, लेकिन दोस्त तो कोई ऐसा था ना जिसके साथ तुम रोज बात करते थे, कोई तुम्हारे हालचाल पूछता रहता था। अगर कहीं बैठे हो और ऐसा लगता है कि किसी से दूर हो गए और जो भी था वो तुम्हारे पास्ट में, वो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से बिताए, तुम उसको यू नो यू से गॉड ब्लेस देम टू व्हाटएवर जो तुम फील करते हो, पर तुम कहीं बैठे हो और तुम तुम खुल नहीं पा रहे। तो मेरे इस घर के रेडियो से बस इतना सा ले जाना कि मैं ना वापस अब धीरे से ओपन माइक्स में जाने वाला हूँ। ओपन माइक्स में कोई पैसे नहीं मिलते, वहाँ पे अपन रीच के लिए जाते हैं। मैं रीच के लिए नहीं जा रहा, मैं बस जा रहा हूँ, मैं ओपन माइक्स में जा रहा हूँ। मैं अपने दोस्तों से वापस मिलने लग गया, मैं दोस्तों से वापस दोस्तियाँ वापस होने लग गई, उनके किस्से सुने, उनकी ज़िंदगी के जब यू नो फुद्दू चीज़ें आप सुनते हो तो आपको लगता है चलो भाई इसकी ज़िंदगी में भी काफ़ी बुरा चल रहा है, तो थोड़ा सा सांत्वना वहाँ भी मिल जाती है। द पॉइंट इज इट्स ओके। दुनिया से बात करने से पहले, साइकोलॉजिस्ट के साथ बात करने से पहले, दोस्त के साथ बात करने से पहले, खुद से बात करना, बस बात करना। किसी खाली सड़क पे निकल जाना, रात के 3 बजे मत निकलना प्लीज, सेफ्टी नहीं होती उसमें, लेकिन निकल जाना, बात करना। खुद को गाली देनी है गाली दे देना, खुद को गाली कैसे देनी है कि मतलब जैसे अगर अपना कोई दोस्त होता तो अपने को गाली दे के समझाता ना, अपना मोटिवेशन ही करता, लेकिन थोड़ा सा रफ होता कि हमें एक फील दिलाए कि मैं तेरा अपना हूँ करके, जो दिल में जैसे तुम खुद को कंफर्ट करना चाहते हो कर देना, पर पहले खुद से बात करना। जब एक बार अपने सामने पूरी भड़ास निकाल दो, सब हो जाए, फिर चले जाना वापस उस दुनिया में। धीरे से नए दोस्त बनाने की शुरुआत करना जैसे मैं कर रहा हूँ, धीरे से वो नया सर्कल बनाने की कोशिश करना जैसा मैं कर रहा हूँ। मैं डेटिंग के लिए वापस बाहर नहीं जा रहा दुनिया में, कभी नहीं गया हूँ मैं, बस एक उम्मीद में कि कभी मैं वापस जब उस दुनिया में बाहर जाऊं तो क्या पता मैं किसी से टकराऊं, क्या पता वो इंसान मेरे जैसा बेवकूफ और पागल हो, मेरे जैसा वियर्ड हो, अजीब हो, पर ठीक हो, क्या पता। ऑल आई नो इज एक कमरे के अंदर बैठ कर ना दुनिया आपके पास नहीं आएगी, यू हैव टू गेट आउट ऑफ द रूम। सो गेट आउट ऑफ दैट रूम, गेट आउट ऑफ दैट रूम, गेट बैक टू द वर्ल्ड। दुनिया इतनी ख़राब नहीं है यार जितना लोग बताते हैं। दुनिया ख़राब क्यों होगी, ठीक है ना, सब अब सबकी अपनी अपनी लाइफ चल रही है, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तुम सोच रहे हो कि उसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, यार उसकी भी तो अपनी लाइफ के पर्सनल डिसीजंस हो सकते हैं ना, उसकी भी तो लाइफ की उन्होंने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो तुम नहीं समझ रहे होगे, हो सकता है। बट प्लीज़ सब कुछ समझते समझते में खुद को समझना मत भूल जाना। गेट आउट ऑफ दैट रूम, किसी छोटी सी गैदरिंग में चले जाओ, कुछ आसपास कोई ओपन माइक हो रहा है, आसपास कोई फलाना फलाना आर्ट फेस्टिवल हो रहा है, चले जाओ, क्या पता किसी से टकराओ, क्या पता। उम्मीद। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वॉज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ घर का रेडियो। हमारे एपिसोड जनरली थोड़े से फन फिल्ड और टा टाइप के होते हैं, ये एपिसोड मैं बस रियल रखना चाहता था, क्योंकि मैं ये एपिसोड पूरी ईमानदारी के साथ बताना चाहता था कि इट्स ओके टू बी इन दिस पोजिशन, बट देर इज़ अ होप आउट देयर, क्या पता है कि नहीं है, बट उम्मीद तो करनी पड़ेगी ना, उम्मीद के बिना तो निपट जाएंगे अपन। सो गेटिंग बैक टू दैट वर्ल्ड, गेटिंग बैक ऑन द हॉर्स, गेटिंग बैक टू दैट सर्कल, क्रिएटिंग न्यू फ्रेंड्स, क्रिएटिंग न्यू पीपल। मैं दोबारा से माइक अपने हाथ में उठाने वाला हूँ, शायद आज शाम को ही उठा लूँ, मतलब कहीं पे ओपन माइक हो रहा होगा भोपाल में तो वहाँ चले जाऊँगा। टेक अ डीप ब्रेथ, गेट आउट एंड रिमेंबर, हंसना नहीं भूलना, जो भी हो जाए हंसना नहीं भूलना, हंसना है, हंसना है, ठीक है, हंसना है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, thank you, I love you, if you listened till here, I love you, thank you, enjoy your life, stay connected with me on the DMs, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसी कहानियाँ सुनाते रहूँगा, और अगले घर के रेडियो के एपिसोड से एक सेगमेंट और इंट्रोड्यूस होने वाला है, which is called as the family moments, और उसके अंदर मैं कुछ ऐसे moments के बारे में बात करूँगा, जो मेरी लाइफ के माइलस्टोन्स बने। दिस इज़ रिलेटेड टू यू, जो JT8 फैमिली के लोगों ने मेरे साथ कुछ ऐसा इंट्रैक्शन किया जो आई डोंट नो, बट द पॉइंट इज ये था पहला एपिसोड ऑफ घर का रेडियो, एंड आई होप आई एम बैक विद अनदर वन, विद अ न्यू वन, विद अ फ्रेश वन, जिसके अंदर हम अपबीट बातें करेंगे, एंड आई होप यू ऑल एंजॉय इट। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।